ये दुविधा लगभग हर मनुष्य के अंदर होती है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वो अपनी वासना से प्रेरित होकर अपनी ही प्रेरणा से कर रहा हूं, या यदि कुछ अध्यात्म विद्या मैंने पढ़ी है या सुनी है तो ईश्वर करवा रहा है इसलिए कर रहा हूं। इसका पहला तो स्पष्ट निर्णय ये है जब तक मनुष्य के अंदर सांसारिक वासनाएं हैं जिसके वशीभूत होकर वो क्रोध का भी शिकार होता है, मोह का भी शिकार होता है, लोभ का भी शिकार होता है, पांचों विकारों का शिकार होता है और उसमें वो अनुचित क्रिया भी कर जाता है, उचित क्रिया भी कर जाता है। ये सारे मनुष्यों की, सारे जीवों की नेचुरल लाइफ है। इसके बारे में तो एक सामाजिक दृष्टिकोण सामने रखकर हम निर्णय करते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। जैसे किसी को जेल का भय हो, पकड़ने का भय हो या फाइन का भय हो तो आदमी अनुचित क्रिया करेगा भी तो छुप के करेगा ताकि किसी को पता ना लगे, क्योंकि पता है मैं अनुचित कर रहा हूं और पकड़ा गया तो मुझे दंड मिलेगा। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो ईश्वर के विज्ञान को भी समझते हैं, जानते हैं, और उनके अंदर ये इच्छा भी आती है कि मुझको भी ईश्वर मार्ग पर चलना चाहिए, अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जिन गुरुओं के बारे में वो सुनते हैं, जो वास्तव में ऋषि हुए हैं, या ऐसे लोगों के जीवन को देखते हैं जो वास्तव में सही रूप में अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके जीवन को देखकर उसके मन में ये निर्णय आता है कि ये शांति से जी रहा है, मेरे मुकाबले में ये चैन से जी रहा है। वो व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी हो सकता है और बड़ा योगी भी हो सकता है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही तुलनात्मक है, तो हमको कहीं ना कहीं सामाजिक लोगों से उसका जीवन बेटर नजर आता है। तो फिर हम उसकी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। यदि कोई ऋषि है तो उसके वचनों को, उसकी वाणी को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर ये विश्वास डेवलप होता है कि इस सृष्टि में ईश्वर की सत्ता है और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर देती है, कोई इसकी निगाह से बच नहीं सकता। तो फिर वो गलती करने के प्रति अलर्ट हो जाता है। सबसे पहले उसके अंदर चेंज ये आती है कि मैं छुप कर भी बेईमानी क्यों ना कर लूं, चाहे किसी को पता ना भी लगे, लेकिन सजा तो मेरी निर्धारित हो गई। यदि मैंने गलती की है, अनधिकार चेष्टा की है, तो सजा तो निर्धारित हो गई, वो प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। تو ایسا فیتھ جب اندر ڈیولپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غلطی کرنے سے ڈر لگتا ہے. تو اس کے اندر کچھ سدھار بھی آتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سنسار میں جن کے اندر ایسے سنسکار پیدائشی ہوتے ہیں, جن کو ایشور کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے, ایشور کے مارگ پر چلنے والوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے, ستپرشوں کی باتیں پڑھنا اچھا لگتا ہے. اس میں اس کی رچی ہوتی ہے, سوبھاوک رچی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی وہ دیکھتا ہے کہ سنسار میں جیسے اور لوگ جی رہے ہیں میں بھی ویسے ہی جی رہا ہوں. جو ان کے من میں بے چینی ہے میرے من میں بھی بے چینی رہتی ہے, اور انتر ایک ہی نظر آتا ہے. کہ میرے اندر اس ایشور مارگ پر بھی چلنے کی اچھا ہوتی ہے, اور میں اس مانسک بے چینی سے مکت ہونے کی راہ تلاش کرتا ہوں. کوئی راستہ بھی ہے کیا اس کا؟ ایسا ویکتی جب شاستر کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے یا ستپرشوں کی باتوں پر گہرا غور کرتا ہے, تب اس کو وہاں یہ سارے سدھانت نظر آتے ہیں جس کو مہاجی کہہ رہے ہیں کہ پریمی پرکرتی کے اندر تو تین گن ہیں, ستو گن, رجو گن, تمو گن, اور یہ ساری سرشٹی ان تین گنوں کے بشیبوت ہو کر کریا کر رہی ہے. سبھی لوگ اس میں بندھے ہوئے ہیں کیونکہ شریر پراکرتک ہے, سنسار پراکرتک ہے, سارا برہمان پراکرتک ہے. جب پرکرتی میں تین گن ہیں تو کریا اس کے انسار ہوں گی. تو اس سنسار میں ہم سوچھ جیون دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. کہیں تمو گن دیکھنے کو ملے گا, کہیں گھور رجو گن دیکھنے کو ملے گا, کہیں ستو گن بھی دیکھنے کو ملے گا. یہ ورائٹی سدیو رہے گی اور سب کے اندر رہے گی. بس انتر ہوگا تو ایک ہی ہوگا, کسی کے اندر ستو گن اسٹرانگ ہوگا, کسی کے اندر رجو گن اسٹرانگ ہوگا, کسی کے اندر تمو گن اسٹرانگ ہوگا. اور جتنی بھی ہماری سانسارک اچھائیں ہیں جن کو ہم اندریوں کے بھوگ کہتے ہیں یا جس کو ہم سکھ کہتے ہیں, اس کے لیے بھی بڑا اسپشٹ نرنے سارے رشیوں کا ایک ہی ہے. چاہے ویدک کال سے آج تک جتنے بھی شاستروں کی رچنا ہوئی, جتنے بھی ستپرش آئے, نرنے ان سب کا ایک ہی ہے, کیونکہ سدھانت ہی ایک ہی ہے. اس میں نہ کبھی پریورتن ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں منش کی جتنی بھی سانسارک سکھ کی اچھائیں ہیں وہ پانچ وکار سے پریرت ہیں, کام, کرودھ, لوبھ, موہ, اہنکار. تو آپ سنسار میں کوئی بھی اچھا پوری کرو وہ کسی نہ کسی وکار کا آف شوٹ ہے, اس کا انکر ہے. اور آپ اس اچھا کو پوری کرنا چاہتے ہو, پوری کرتے ہو, تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے تو اچھا پوری کی زائد طریقے سے پوری کی. آپ یہی تو کر سکتے ہو, میں زائد طریقے سے اچھا پوری کر لوں گا, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے جو بھی اچھا پوری کی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان پانچ وکار میں سے ایک وکار کو پکا کر رہی ہے, اس کے سنسکار کو پکا کر رہی ہے. تو اس لیے سانسارک طریقے سے چاہے آپ بالکل پیور جیون ویتیت کرو, چاہے بےمانی کر کے ویتیت کرو, لیکن پانچ وکار کے شکار آپ ہوتے ہی رہو, اس سے آپ نہیں بچ سکتے. تو آپ پھر منش کرے تو کیا کرے؟ کوئی راستہ ہی نہیں اس کا. جب سنسارک جیون جیتے ہوئے جیون جینے کے طریقے میں تو انتر ہوا ہے, جیسے کوئی بےمانی کر کے جی رہا ہے, کوئی ایمانداری سے جی رہا ہے, طریقے میں تو انتر ہے. कोई अपना बड़ा ही लिमिटेड इच्छाएं पूरी करता है, कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं बना लेता है, पूरी जिंदगी उसमें उसमें बड़े शौक से व्यतीत कर देता है। तो तरीके में तो अंतर है, लेकिन इफेक्ट उसका एक ही तरीके का है कि मनुष्य जितना अधिक सांसारिक सुख भोगने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी अनुपात में उसके अंदर इन पांच विकारों की वृद्धि होती रहे। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सांसारिक जीवन ही है, इसको हम प्राकृतिक जीवन कहते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते या सत्संग श्रवण करते करते या किसी सत्पुरुष का संग करते करते या किसी भक्त का संग करते करते ये बात उसकी बुद्धि पकड़ लेती है कि प्राकृतिक जीवन पांच विकार से युक्त है और संसार में इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। पांच विकार महान दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। अब उसकी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेती है कि सारा संसार इसी में फंसा हुआ है, इसी में परेशान हो रहा है, जिसको मानसिक क्लेश कहते हैं वो यही है, तो इससे मैंने छुटकारा पाना है, कैसे पाऊं। वो फिर उस मार्ग को समझने की कोशिश करता है जिस मार्ग पर चलने के लिए सत्पुरुष प्रेरित करते हैं, जिसको सतमार्ग कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कहते हैं, ईश्वर की खोज का मार्ग कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब किसी जानकार व्यक्ति का संग मिलता है जो उस मार्ग पर चल रहा हो या पहुंच चुका हो, उसके प्रति उसके मन के अंदर श्रद्धा पैदा होती है, उसके संग रहने का उसका मन करता है, उससे बातें करने का उसका मन करता है, उसके जीवन को ही वो बारीकी से देखता है, निरीक्षण करता है, तब शास्त्र की बातें उसके उसकी बुद्धि में बैठने लगती हैं, समझ में आने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति को जब महाजी जैसे सदगुरु पर विश्वास आ जाए, वो कोई भी पूर्ण गुरु हो सकता है, पूर्ण ऋषि हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये हम ले रहे हैं, महाजी जैसे सदगुरु पर विश्वास आ जाए, ये सुनेगा भी पढ़ेगा भी कि महाजी इस बीमारी से मुक्त होने का रास्ता बता क्या रहे हैं। उन्होंने तो बड़ा सरल रूप में कह दिया कि सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्संग, ये 5 पॉइंट प्रोग्राम है, इस पर तू अमल कर, धीरे धीरे तेरे विकार कमजोर पड़ते चले जाएंगे और ईश्वर भक्ति के संस्कार तेरे मन के अंदर बनते चले जाएंगे, या यूं कहिए तेरे अंदर तमोगुण रजोगुण कमजोर पड़ता जाएगा, सतोगुण की वृद्धि धीरे धीरे होने लगेगी। तो मैं जब इसको अपनाता हूं तो माझी कहते हैं, प्रेमी जैसे जैसे तू इस प्रोग्राम को अपने जीवन में अपनाएगा तेरी बुद्धि में बल आ जाएगा, अर्थात आगे की चीज बुद्धि में समझने की क्षमता आ जाएगी, फिर तू इस गुण दोष को प्राकृतिक चक्र के समझने में समर्थ हो जाएगा, तब तुझको आगे की बातें समझ में आएंगी कि ईश्वर मार्ग पर यदि मैंने चलना है, वो ईश्वर मेरी देह के अंदर ही विराजमान है और पूरी सृष्टि में विराजमान है, उसकी सत्ता के अलावा यहां कुछ है ही नहीं, तो मैं उसका अनुभव करूंगा कैसे। तो वो सोचता है कि ईश्वर क्या है, निर्वास है, ईश्वर क्या है? वो निःकर्म है। वो ईश्वर की सत्ता अपने आप में कर्म रहित है, वासना रहित है। और जहां जो सत्ता कर्म रहित और वासना रहित है, तो वो सत्ता कैसी होगी? फिर वो शांति रूप होगी, वो आनंद रूप होगी, वो ज्ञान रूप होगी। और चाहिए मुझको यही शांति। अध्यात्म में उसे कहते हैं जो कभी भी ना सुख में बदल सकती है ना दुख में बदल सकती है। शांति उसको कहते हैं, आनंद भी उसको कहते हैं जो द्वंद चक्र से रहित है। क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं वो इस द्वंद रचना को ही जानते हैं। दुनिया का ऐसा कोई मनुष्य नहीं जानता हो जो सुख दुख का शिकार ना हो, सुख दुख से प्रेरित तो उसके कर्म ना होते हो, ऐसा कोई मनुष्य है? तो हमारा जीवन सुख दुख रूप है। और सत्पुरुष कहते हैं जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। अब ये बात उसके सामने आती है तो ये तो दुनिया से बिल्कुल अलग बात है। वो कह रहे हैं जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, जो सुख चला जाए या बदल जाए वो तो जीव के मन को क्लेश देने वाला है, दुख देने वाला है। तो जीव इसी में तो जी रहा है, दुख से तो बेचैन रहता ही है, लेकिन सुख में भी जब परिवर्तन होता है तो और दुखी हो जाता है। मेरा सुख का आधार ही छिन गया मुझसे। तो अब बताइए कि जो सुख है भी वो परिवर्तनशील है, तो आदमी जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे? और दूसरा सिद्धांत पढ़ता है वो, हर सुख दुख में बदल जाता है। दुनिया में तो ये बात कोई नहीं कहता, दुनिया में ये बात कोई नहीं करता, ऋषि का शास्त्र करता है, वाणी करती है, हर सुख दुख में बदल जाता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता जाता रहता है। जिस प्रकार दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता जाता रहता है, इसकी प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। तो संसार का हर प्राणी सुख के लिए कोशिश करता है, सुख की कोशिश में दुख परमानेंट भोगता ही रहता है। और इस दुख रूपी जीवन में ऐसा नहीं है सुख नहीं मिलता उसको, सुख मिलता है, लेकिन वो सुख का पीरियड जो है वो ऐसा ही होता है जैसे कोई लंबे रेगिस्तान की यात्रा कर रहा हो और बीच में कहीं हरियाली दिखाई पड़े, हरा हरा वृक्ष दिखाई पड़े और बड़ी आशा से उसकी तरफ बढ़ता है, यहां ठंडक मिलेगी मुझको, वहां पहुंच भी जाता है, ठंडक मिलती भी है उसको, यात्रा तो लंबी है उसकी। कुछ देर वो सस्ताता है, कुछ देर सुख भोगता है उसका, फिर यात्रा पर निकल पड़ता है। तो सत्पुरुषों का जो विश्लेषण है इस संसार के बारे में, इस प्राकृतिक जीवन के बारे में, वो कहते हैं इसमें लंबा दुख है और बीच बीच में क्षणिक सुख है। तो जो विचारवान बुद्धि रखता है वो विचार करता है गहराई से, बात तो ठीक है, इस संसार में सुख तो है, सुख कम है, सुख की आशा लंबी है, सुख की आशा में लंबे दुख की यात्रा, लंबी बेचैनी की यात्रा तय करता है ये, और क्षणिक सुख भोगता है, इसलिए उसको दुविधा कहा जाता है, माया कहा जाता है। सुख की आशा में ये मानसिक बेचैनी मन के अंदर पालकर जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है। इसलिए वाणी कह रही है कि सुखिया कोई ना देखया जो आया इस संसार। इसका अंदर वाणी ये नहीं कह रही किसी को इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं होते, वाणी ये कह रही है कोई संतुष्ट नहीं होता इस संसार, सांसारिक जीवन जी के कोई भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, असंतोष लेकर ही पैदा होता है, असंतोष लेकर ही जीता है और असंतोष के साथ ही मर जाता है, ये इसकी जीवन यात्रा होती है। कर्म कर करके थक जाता है। तो सत्पुरुष उसको कहते हैं कि जब तक तेरे मन के अंदर वासना पल रही है या त्रिगुणी इच्छाएं पल रही हैं तब तक तुझको कभी भी चैन नहीं मिलेगा, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। तूने अंतर्यामी ईश्वर का जब तक अनुभव नहीं किया तब तक तुझको अशांति ही भोगने को मिलेगी। इसलिए गहराई से ये उस ईश्वर के विज्ञान को समझने की कोशिश करता है। जब ईश्वर के विज्ञान को समझने की दिल से इच्छा होती है, पूरी कोशिश करता है, तब ये अपने विज्ञान को भी समझने की कोशिश करता है। वहां फिर ये ईश्वर के सिद्धांत समझता है कि इस पूरी प्रकृति रचना के सिद्धांत क्या है, किस नियम पर चल रही है, ये जन्म मरण सुख दुख है क्या चक्कर है? तब उसको बताया जाता है कि तू जीव है, तू देह नहीं है। अब ये पहली बार ये बात सुनता है, अभी तो मनुष्य समझ रहा था अपने आप को, अब इसको नई चीज पता लगती है, तू जीव है तू देह नहीं है। और देह का नाम है स्थूल शरीर, और इस देह के साथ सूक्ष्म शरीर भी चिपका हुआ है जिसको हम अंतःकरण कह देते हैं, जिसको हम मन कह देते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। देह की क्रियाएं सूक्ष्म शरीर से प्रेरित होती हैं, और तू जैसी मन में वासना पाल रखी है उसके अनुसार कर्म फल नहीं मिलता तुझको, तो तू बेचैन होता है, तो जीव दुखी होता है। देह भी जड़ है और मन भी जड़ है, जीव चैतन्य है, उसमें चेतना है, उसमें कॉन्शियसनेस है, वो जानता है, मुझको पता है मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं जिसको भी जानता, मैं मन को जानता हूं कि मेरे मन में क्या विचार उठ रहा है, क्या संकल्प उठ रहा है, मुझे पता है। मैं अपनी देह को भी जानता हूं, तो जो जानने वाला है वही तो दुखी होगा। तो मैं इस जड़ के कारण, मन और तन के कारण दुखी होता, तब ये सोचने पे मजबूर हो जाता है फिर ऐसी कौन सी चीज है, सब कुछ तो यही है, सब कुछ तो तन करके मन करके ही है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करके जिसको जान करके मेरे अंदर ठंडक पड़ जाए। तब उसको शास्त्र सिखाते हैं, देख इसी जड़ देह के अंदर तू चेतन रह रहा है नहीं रह रहा है इसमें, तो उसको समझ आती है हाँ मैं तो हूं देह के अंदर ही हूं, देह के बाहर तो नहीं हूं। तो उसको यह भी सिखाया जाता है ये देह जो चल रही है क्रिया कर रही है ये प्रारब्ध के अधीन है, और प्रारब्ध क्या है, तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का वो फल जो तूने नहीं भोग पाया इस शरीर के साथ एक पैकेज के रूप में, एक जन्म पत्री के रूप में तुझको दिया गया है, उसके अनुसार ही ये देह क्रिया करेगी, संसार में तुझे सुख दुख सब प्राप्त होंगे। तो तेरा जीवन जो शारीरिक जीवन है वो कोहलू के बैल की तरह से है जो बंधा हुआ है खूंटे से और अपने एक सर्किल में चक्कर काट रहा है। इस बात पर भी इसको बड़ी मुश्किल से विश्वास आता है, क्योंकि जब कुछ वक्त बीतता है सत्संग सुनते सुनते शार्क का एनालिसिस करते करते, मनन करते करते, इसके अंदर ये विश्वास धीरे धीरे गहरा होने लगता है कि वास्तव में ये जो शारीरिक जीवन है ये प्रारब्ध के अधीन है और इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो सोचता है फिर क्या कर सकता है तू, शारीरिक जीवन तेरा प्रारब्ध के अधीन, और कुछ करने का मेरा बस नहीं चलता, मैं करूं तो क्या करूं। तो सब कुछ बताते हैं इस देह के अंदर वो ईश्वर सत्ता भी तो मौजूद है जो इस देह का संचालन प्रारब्ध के अनुसार कर रही है। प्रारब्ध के अनुसार वो इसका संचालन कर रही है, वो इस देह के अंदर ही मौजूद है। जिस प्रकार मैं इस देह के अंदर मौजूद हूं वो भी इसी देह के अंदर मौजूद है, और वो सत्ता आनंद रूप है, शांति रूप है, सुख दुख से मुक्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त है, पांच विकार से मुक्त है। तेरी यदि उस सत्ता से भेंट हो जाए जिसका नाम है ईश्वर, जिसका नाम है आत्मा, तब तेरे अंदर भी वही स्थिति आ जाएगी जो ईश्वर की स्थिति। देह जिंदा रहे या मरे, कैसे भी देह से कर्म होते रहे हों, उस सत्ता पे कोई असर नहीं, वो निर्लेप, वो हमेशा ही आनंद रूप है, शांति रूप है, उसकी शांति में उसकी निर्लेपता में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसीलिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य एक है, अंतर्यामी उस सत्ता से भेंट करना। ये मानुष देह, मानुष जन्म तुझको इस वास्ते दिया गया है। अब विचार करो जरा कि गुरु जब 5 पॉइंट प्रोग्राम दे रहा है आपको, किस वास्ते दे रहा है? एक ही उद्देश्य, तेरे मन को वो निर्वास करना चाहता है। इस सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्संग का कोई उद्देश्य नहीं है दूसरा, और तेरे मन के अंदर जो ये वासना उठ रही है, ये वासना रूप ही है मन, और कुछ नहीं, मन वासना रूप ही है। तो इस 5 पॉइंट प्रोग्राम पर चलते चलते धीरे धीरे, एक मेथड है ये, धीरे धीरे तेरे अंदर इच्छाएं कमजोर पड़ेंगी, और उधर क्योंकि सिमरन कर रहा है तो प्रोग्राम में शामिल है, तो ईश्वर को याद करने की ये तेरी आदत बन जाएगी, और हर वर्ष तेरे अंदर ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, उसके प्रति जो अनुराग है, उसमें वृद्धि होगी यदि ईमानदारी से चल रहा है तो। जैसे कोई स्टूडेंट 10वीं क्लास में आ गया, 10वीं क्लास में आते आते उसके अंदर इतनी बुद्धि आ जाती है कि भाई मुझे बड़ा होकर क्या बनना है, अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है, उसके अंदर समझ आ जाती है किसमें कौन सा जीवन अच्छा होता है। तो वो कष्ट सहकर भी ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, स्पेशलाइजेशन करता है, 25 साल तक पढ़ता रहता है। तो ये जो पढ़ाई है कष्ट के दिन है ना उसकी, लेकिन आशा कौन सी है? सुख की आशा है, अच्छे दिनों की आशा है। तो उसी प्रकार जिसकी बुद्धि में ईश्वर विश्वास आया है, वो इस 5 नियम पर चलकर अपने जीवन, सांसारिक जीवन को सिकोड़ने की कोशिश करता है, धीरे धीरे श्रृंग करता है। हो सकता है घर वाले बात ना माने, हो सकता है दुनिया उसकी बात ना माने, उसका इससे वास्ता नहीं होता, क्योंकि समझ में उसकी आई है, उन लोगों की समझ में नहीं आया। तो उसका जीवन गुरु निश्चय के अनुसार चलता है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलता है, वो अपने आप में अकेला है। तो साथी कोई है तो इस मार्ग पे चलने वाला साथी है या गुरु उसका साथी है, बस। तो ये फिर गुरु की बात पढ़ता है, उसके अनुसार जीवन का प्रोग्राम बनाता है। महा जी कह रहे हैं, प्रेमी स्वार्थ और परमार्थ की समय सीमा बांधकर तो निश्चित समय संसार में दे और निश्चित समय ईश्वर मार्ग में चलने के लिए दे, जिसमें सत्संग भी शामिल है, स्वाध्याय भी शामिल है, सेवा भी शामिल है, सिमरन भी शामिल है। वो सारी क्रियाएं शामिल हैं जो ईश्वर भक्ति में सहायक है। समय सीमा बांध के, अब समय सीमा बांधेगा तो उसके लिए माजी कह रहे हैं प्रेमी मर्यादा का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और सही कहा जाए तो मर्यादा क्या है? इन विकारों को मैं कम से कम भोगने की कोशिश करूं, इन विकारों को कम से कम भोगने की कोशिश करूं, और जो पांच गुण हैं, निर्माणता, निष्कामता, उदासीनता, परोपकार, निश्चलता, इनको बढ़ाने की कोशिश करें। रास्ता तो यही होगा। तो मैं संसार की नकल कैसे कर सकता हूं? लेकिन गलती कहां होती है? गलती ये होती है कि इस अध्यात्म का भी मैं मिसयूज करता हूं। भोगवादी जीवन चलता रहता है, समय का दुरुपयोग मैं संसारी भोगों के लिए करता रहता हूं, कमाई में करता रहता हूं, और कह देता हूं कि भगवान ने प्रारब्ध भी मुझे ऐसा दिया है, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, प्रभु करवा रहे हैं मुझसे। चलो मान ली बात, महर्षि रमण की बात ही मान ली। महर्षि रमण कह रहे हैं जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह के द्वारा होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इस देह के द्वारा होंगे यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन तेरा दिल कहां लगा हुआ है वो तो जरा देख। ईश्वर का सिमरन छूट गया कोई बात नहीं, और एक तेरा टेंडर तेरे विरुद्ध पड़ गया, छह दिन तुझे नींद नहीं आई, तेरा दिल कहां पड़ा हुआ है वो तो देख। प्रारब्ध ये तो नहीं कह रहा कि दिल तेरा वहां पड़ा रहेगा, तेरी बुद्धि का निश्चय कहां पड़ा हुआ है वो तो देख। तू दुकानदारी करता है, पैसा कमाता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा दिल लगा रहता है तेरे अंदर, और जिससे मैं सिमरन करता है उसे मेरी दुकान याद करता रहता है, अपनी चेयर याद करता रहता है। तो सिमरन करते वक्त तेरा दिल वहां क्यों पड़ा हुआ है? मेरा मन को तो देख अपने, तो तुझे खुद अपनी करनी पता लग जाएगी, तुझे खुद अपनी वासना पता लग जाएगी, कितनी गहरी वासना है। तो अब बता, तूने गुरु की बात यदि नहीं मानी और उसके अनुसार तूने प्रोग्राम नहीं बनाया, हो सकता है तू बार बार फेल हो, लेकिन तू एक्सेप्ट तो करेगा इसके बिना मेरा कल्याण है ही नहीं, मेरी जिंदगी की बर्बादी है। अरे जब वाणी कह रही है कि प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए, तो मैं कैसे बहानेबाजी कर सकता हूं कि गृहस्थी का पालन करने के लिए मुझको दुर्लभ जीवन मिला है, पैसा कमाने के लिए दुर्लभ जीवन मिला है, सारी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए मुझे दुर्लभ जीवन मिला है, कहीं लिखा है क्या? मजबूर जीवन तो राबिया का भी था, गुलाम थी वो, शरीर से वो सारे कर्म करने पड़े जो गुलामी की हालत में करता है, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे कर्म, मजबूर थी। देखिए मजबूरी क्या थी कर्म में उसकी, उसकी लेश बात भी इच्छा वहां कर्म में नहीं लगती थी, मन लगता ही नहीं था उसका, मन प्राण उसके ईश्वर में ही पड़े रहते। जब भी अकेली होती थी रोती थी, याद करती थी प्रभु, प्रभु अपनी याद करने का कम मौका दोगे, वो मौका मांग रही है लेकिन फिर भी 24 घंटे उसको याद आ रही है। तड़प पैसे की नहीं है, तड़प सुख की नहीं है, तड़प ईश्वर मिलन की है। तो इसमें कर्म बंधन कहां है? ये तो मन का सौदा है, मन की स्थिति है। और वही राबिया अंतर्यामी ईश्वर ने जब कृपा की, उसकी करुण पुकार सुनी, वही राक्षस मालिक उसका, उसने एक दिन रात को वो दृश्य देख लिया कि राबिया बैठी हुई है प्रभु के आगे, रो रही है, पुकार कर रही है, उसके चारों तरफ एक प्रकाश जैसा नजर आ रहा है। अगले दिन उसने आजाद कर दिया, उन्होंने कि ये तो प्रभु भक्त है, मैंने उसको कहां बांध रखा है। तो मालिक ने आजाद नहीं किया, अंतर्यामी ईश्वर ने आजाद किया। तो जीते वो अंदर से उसके लिए रही थी, शरीर उसका संसार में था। मैं अपना देखो, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मेरा मन कहां पड़ा हुआ है, बुद्धि कहां पड़ी है, बेचैनी किसके, बेचैन मैं किसके लिए हो रहा हूं, ईश्वर के लिए हो रहा हूं या पैसे के लिए हो रहा हूं, परिवार के लिए हो रहा हूं, मुझे पता है इस बात का। इसलिए प्रारब्ध आत्मा कैसा भी क्यों ना हो, आपके अंदर ईश्वर भक्ति जारी रह सकती है, क्योंकि प्रारब्ध आपके वश में नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहां पड़ा हुआ है वो मेरे वश की बात है। तो इसीलिए तो संतोष की बातों पर हमें विश्वास आता है, वो बातें समझ में आती हैं, और मैं अपना प्रोग्राम भी पक्का बनाता हूं और पूरे दिलो जान से चलने की कोशिश करता हूं, फिर भी बाधाएं आती हैं तो मन रोता है, क्योंकि संसार मुझे दुख रूप नजर आता है, इसमें सुख भोगने की कल्पना मेरे अंदर से खत्म हो जाती है। तो दो वक्त सिमरन की मौका मिले ना मिले, लेकिन दिल रोता है उसका, तड़पता है उसका, उसकी तो पुकार सुनी जाती है, वक्त नहीं मिला तो क्या बात। एक ने 20 साल सिमरन करके वो अवस्था प्राप्त की थी, वो 20 दिन 20 महीने सिमरन करके भी वो अवस्था प्राप्त कर सकता है, इतना बड़ा अंतर होता है सिमरन सिमरन में। जो उसने 20 साल में प्राप्त किया वो 20 महीने में 20 दिन में प्राप्त कर सकता है, उसकी तड़प की बात है, कैसी तड़प है उसके अंदर। ईश्वर उसकी लगन को जानता है, उसको देखता है। इसलिए माल कहते हैं, प्रेमी मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबार। तेरा जीवन कैसा होना चाहिए, भोगते रहे घर वाले, तू नहीं इकट्ठे किए हैं लेकिन भोगते रहे, कोई बात, तुझे अब समझ में आ गई है, तेरा उनसे नाता कोई नहीं। तो इसीलिए जैसे जैसे आपके अंदर सतमार्ग के प्रति चाव बढ़ता है, यह आध्यात्मिक सिद्धांत जो आपके दिल में गहरे बैठते हैं, बुद्धि इसको एक्सेप्ट करती है, तो माँ जी कहते हैं कि तेरे अंदर जब विवेक परिपक्व होता है तो तेरे अंदर वैराग्य भाव पैदा हो जाता है, संसार से राग टूट जाता है, और उस टूटे राग के साथ तेरा जो अनुराग है प्रभु के चरणों में बन जाता है। तब तुझको पता लगता है कि हर हालत में मैं प्रभु की याद कर सकता हूं, प्रभु की भक्त कर सकता हूं, लेकिन संसार इस मन के लिए फीका हो जाता है, ये कंडीशन। तो ये प्रक्रिया ओवरनाइट नहीं होती, इसके लिए लगातार पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, लेकिन शिकायत का कोई मौका नहीं है। ईश्वर आपकी मजबूरी को, आपकी इच्छाओं को, आपकी सोच को सब जानता है, इसलिए जो दिल से ईश्वर को चाहता है, जिससे उसके लिए प्रयास कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, उस पर प्रभु कृपा होती है और जीवन में ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा होता है। बीच में देह शांत हो भी गई, मृत्यु हो भी गई, उसको इस बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने सदमे का सदुपयोग किया है, उसको पता है अब नई देह मिलेगी तो ये लगन मेरे मन में होगी बचपन से, तो उसी लगन के अनुसार मुझको नया प्रारब्ध मिलेगा, नई कंडीशंस मिलेंगी, वहाँ मेरी भक्ति गहरी करके आगे चलेगी ईश्वर प्राप्ति। ओम ब्रह्म सत्य सर्वथा।